أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد. پیارے دوستو، السلام علیکم. ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے احکام پر آدھارت پاٹھے کرم لے کر اپستھت ہوئے ہیں. ہم اپنے اس پروگرام میں اپنے جیون سے سمبندھت وبھن مسئلوں کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، اور ہمارا پریتن یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمارے جیون میں آوشک ہے، جس کا اسلامی شریعت سے واسطہ ہے، اس کے بارے میں جو احکام ہماری شریعت میں بتائے گئے ہیں، ان کو آپ کے سامنے بیان کریں. اور ہم اپنے اس پروگرام میں پریتن یہ کرتے ہیں کہ وہ پرشن جو ادھکتر ہمارے درشکوں کی طرف سے یا دوسرے لوگوں کی طرف سے پوچھے جاتے ہیں، ان کا اتر دیا جائے. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، ہم اپنے اس پروگرام میں مطہرات یا ان چیزوں کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں جو کسی نجس وستو کو پوتر کر سکتے ہیں. ہم نے اپنے اس ادھیائے کو جب آرمبھ کیا تھا، اسی سمے آپ کے سامنے یہ بتایا تھا کہ مطہرات یا پاک کرنے والی چیزیں 10 پرکار کی ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم نے اس 10 چیزوں کے بارے میں دھیرے دھیرے وسترت روپ سے بات چیت اپنی آرمبھ کی تھی. سب سے پہلے ہم نے پانی سے شروع کیا تھا، اس کے بعد زمین تک پہنچے تھے کہ پانی کس چیز کو کن شرطوں کے ساتھ پوتر کرتا ہے، اور زمین کن چیزوں کو کن شرطوں کے ساتھ پوتر کر سکتی ہے. ہم اپنے آج کے پروگرام میں اسی بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. مطہرات میں ایک چیز جو آتی ہے وہ ہے آفتاب یا سورج، جس کے بارے میں ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی بہت ہی سنکھپت روپ سے اس کی طرف کیول ایک اشارہ کیا تھا. آج ہم اسی کے بارے میں اپنی بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. آپ سبھی جانتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارے جیون میں ایسا ہوتا ہے کہ گھروں کی چھتیں، دیواریں یا دروازے، کھڑکیاں، اس پرکار کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی سے چیز سے نجس ہو جایا کرتی ہیں، اپوتر ہو جایا کرتی ہیں. تو ان کو پوتر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شاید اگر چھوٹے موٹے گھروں کے بارے میں ہم دیکھیں تو شاید کوئی ہمارا بھائی یہ کہہ دے کہ پانی ڈال کے اس کو پوتر کیا جا سکتا ہے. چھوٹی موٹی بلڈنگوں یا گھروں کے بارے میں شاید اس طرح کے اتر صحیح بھی ہو سکے، اس پرکار بھی پوتر کیا جا سکے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جگہ یا وہ استھان ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پر پانی کا پہنچنا سمبھو نہیں ہوتا یا بہت سخت ہوتا ہے، کٹھن ہوتا ہے، اس پرکار کے سچویشن پیدا ہو جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں، ایسی اوستھا میں اس استھان کو کیسے پوتر کیا جائے گا؟ یعنی ہمارے گھروں کی چھتیں، دیواریں، دوار، کھڑکیاں، اس پرکار کی چیزیں اگر نجس ہو جائیں تو ان کو کیسے پوتر کیا جائے گا؟ تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ سورج کچھ چیزوں کو کچھ شرطوں کے ساتھ پوتر کر سکتا ہے. سورج جن چیزوں کو پوتر کر سکتا ہے، اس میں سے گھروں کی چھتیں ہیں، گھروں کی دیواریں ہیں، وہ دروازے اور کھڑکیاں ہیں جو گھروں میں لگے ہوئے ہیں، اور اسی پرکار وہ پیڑ، وہ پودے، وہ گھاس، وہ پھوس جو اس سمے زمین میں لگے ہوئے ہیں، زمین سے اکھاڑے نہیں گئے ہیں، اگر یہ چیزیں کسی کارنوش نجس ہو جائیں تو ان کو سوریہ یا سورج پوتر کر سکتا ہے. لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کو سوریہ پوتر کرنا چاہتا ہے، اس کے اوپر سے جو اصل نجاست ہے، اصل اپوترتا ہے، وہ گندگی جو اس کے اپوتر ہونے کا کارن بنی ہے، اس کو ہٹایا جا چکا ہو. جیسے اگر گھر کی دیوار پر پیشاب یا مل موت یا شراب یا اس پرکار کی کوئی چیز اگر لگی ہوئی ہے، تو तो सूरज उस दीवार को उसी समय पाक कर सकता है, उसी समय पवित्र कर सकता है जब सबसे पहले उसको स्वयं हटाया जा चुका हो। अगर वो चीज़ लगी है तो सूर्य उसको पवित्र नहीं कर सकेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अपवित्र स्थान है, जैसे कि हमारी मिसाल में दीवार, वो तर हो, भीगी हुई हो। अगर तर है और भीगी हुई है तभी उसको सूर्य पवित्र कर सकता है। अगर सूर्य की किरणें पड़ने से पहले ही वो चीज़ शुष्क हो या सूखी हुई हो तो उसको हमारा सूर्य पवित्र नहीं कर सकेगा। और तीसरी चीज़, जो तीसरी शर्त कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा जो है पवित्र करने, वो ये है कि जिस समय सूर्य की किरणें उस अपवित्र स्थान पर पड़ रही हैं उस सूर्य की किरणों में कोई चीज़ रुकावट ना हो, डायरेक्ट सूर्य की किरण उसके ऊपर पड़े। जैसा ऐसा ना हो कि सूर्य की किरणों के बीच में बादल हों या कोई पर्दा वगैरह पड़ा हो, इसके माध्यम से वो चीज़ सूखे ना, ऐसा ना हो डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़े। हाँ, अगर बादल बहुत हल्के हैं या पर्दा बहुत पतला है तो उसके बारे में कोई इश्काल नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, वो चीज़ उसमें रुकावट नहीं बनेगी। और एक बात और, वो सूर्य की किरण डायरेक्ट पड़े, यानी क्या मतलब, यानी वो अपवित्र जो स्थान है उसके ऊपर जब सूर्य निकले या सूर्य अपने किसी स्थान पर पहुँचे तो उसके ऊपर सीधी उसकी किरण पहुँचे। ऐसा ना हो कि अगर अंदर का भाग अपवित्र हो गया है, सूर्य की किरण वहाँ नहीं पहुँच सकती है, हम शीशे के माध्यम से या किसी और माध्यम से सूर्य की किरण को उस तक पहुँचाए तो इस प्रकार वो अपवित्र स्थान पवित्र नहीं होगा। और एक और शर्त जो है वो ये है कि सूर्य स्वयं उसको अकेला सुखाए, यानी क्या मतलब, यानी जिस समय वो चीज़ जो नजिस थी, जो अपवित्र थी, सूख भीगी हुई थी, उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ें और उन किरणों के माध्यम से वो चीज़ सूख जाए। ऐसा ना हो कि सूर्य की किरण भी पड़ रही हो, तेज़ हवाएं भी चल रही हैं तो हवाओं के साथ सूख गया हो, या उसको किसी ड्रायर से सुखा दिया गया हो ना। अगर इस तरह से चीज़ें सुखाया जा रहा है तो वो चीज़ें सूर्य की किरणों से पवित्र नहीं मानी जाएंगी, बल्कि आवश्यक ये है कि उनको सूर्य की किरण सुखाएं। यहीं पर एक बात आपको बता दूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ अपवित्र थी वो पहले सूखी थी, अब अगर हम उसको सूर्य से पवित्र करना चाहें तो उसको कैसे पवित्र करेंगे, तो उसका बेहतरीन रास्ता ये है कि जो अपवित्र स्थान है उसको हम भिगो दें। अपवित्र स्थान भीगने के बाद अगर सूर्य उसके ऊपर किरणें पड़ती हैं, किरणें पड़ने के बाद वो चीज़ सूख जाती है तो पवित्र हो जाएगी। एक चीज़ जो कही जाती है, जो हमारे फुकहा इस मामले में इस बारे में कहते हैं, वो चीज़ ये है कि जिस समय सूर्य की किरण उस अपवित्र स्थान, उस अपवित्र दीवार या दर या दरवाज़े या छत पर पड़ रही है, उसका हर भाग, अंदर का भाग और बाहर का भाग एक साथ सूखे। अगर अलग अलग सूख रहा है, जैसे कि अगर एक दिन में बाहर का भाग सूख गया, दूसरे दिन में अंदर का भाग, तो सिर्फ़ और सिर्फ केवल बाहर का भाग ही पवित्र माना जाएगा और अंदर का भाग सूर्य के माध्यम से पवित्र नहीं हो सकेगा। तो ये वो चीज़ें थीं जिनको सूर्य से पवित्र किया जा सकता है, जैसे दरवाज़ा, जैसे घर की दीवारें, जैसे छत, लेकिन अपनी शर्तों के साथ, जैसे सूखी ना हो, भीगी हो, सूर्य की किरण डायरेक्ट पड़ती हो, उसमें कोई रुकावट ना हो, वगैरह वगैरह। इस प्रकार की अगर शर्तों के साथ सूर्य की किरण किसी अपवित्र घर, किसी अपवित्र दीवार, किसी अपवित्र पेड़ पे पड़ रही हैं तो उसको पवित्र कर सकती हैं। तो ये वो चीज़ थी जो मुताहरात के भाग में सूर्य जिन चीज़ों को पवित्र कर सकता है। इसी भाग में एक और चीज़ आती है जो किसी चीज़ को पवित्र कर सकती है, वो है इस्तेहाला। शायद सुनने में बहुत कठिन लफ्ज़ लगे, कठिन शब्द प्रतीत हो, कि इस्तेहाला किसको कहते हैं। इस्तेहाला हमारी शरीयत में उस चीज़ को कहा जाता है कि कोई चीज़, कोई अपवित्र चीज़ अपने मूल रूप को बदल कर दूसरा रूप अख्तियार कर ले, दूसरी सूरत में आ जाए। अगर कोई अपवित्र चीज़ अपना मूल रूप बदल कर दूसरी सूरत में आ जाती है तो उसको इस्तेहाला कहा जाता है, और इस्तेहाला किसी अपवित्र चीज़ के पवित्र होने का कारण भी बनता है। यानी अगर कोई चीज़ इस्तेहाला की सूरत अख्तियार कर लेती है, किसी चीज़ में इस्तेहाला हो जाता है, तो वो चीज़ इस्लामी शरीयत के अनुसार और हमारे फुकहा के फतवों के अनुसार वो चीज़ पवित्र हो जाएगी। कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर दूं ताकि ये बात अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए और हमारे जहनों में बैठ जाए कि इस्तिहाला किसको कहते हैं और कैसे कोई चीज़ इस्तिहाले के माध्यम से पवित्र हो सकती है। जैसे कि हम सब आप सभी जानते हैं, हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात बताई थी कि मुर्दार या मृत जीव या इंसान का शरीर, मृत इंसान का शरीर अपवित्र होता है। अगर ये अपवित्र जीव या मृत शरीर अगर मिट्टी में पड़ा रहे, मिट्टी में पड़े पड़ा इतना समय बीत जाए कि उसका शरीर मिट्टी में बदल जाए, तो ये जो मिट्टी होगी उसको पवित्र कहा जाएगा। हम जानते हैं कि वो शरीर से मिट्टी बनी है और शरीर पहले अपवित्र था, लेकिन चूंकि ये शरीर, ये मुर्दार इस्तिहाला होकर मिट्टी में बदल गया है, इसलिए हमारे फुकहा ये कहते हैं कि ये चीज़, ये मिट्टी जो है वो पवित्र होगी। और इसी में एक और उदाहरण पेश करूँ, जैसे दाने होते हैं, बीज होते हैं, अगर ये बीज या दाने, ये चीज़ें अपवित्र हों, अगर उनको मिट्टी में दबा दिया जाए या खुद मिट्टी में चले जाएं, उसके बाद उनको सूरज और पानी सही समय पर सही अवस्था में मिलता रहे, उसका पौधे का रूप ले लें, अगर नजिस दाना, नजिस बीज पौधे का रूप ले लेती है, तो उसको भी इस्तिहाला कहा जाएगा और ये इस्तिहाला उस दाने के पवित्र होने का कारण बनेगा। जैसे कि इसमें एक चीज़ और जो हम अपने आम जीवन में भी इसको अधिक देखते हैं, जैसे कि नजिस लकड़ी, अगर किसी पेड़ की कोई शाखा हमने काटी वो नजिस थी, तो नजिस लकड़ी को अगर जलाया जाए और जल के वो राख बन जाए तो उसे इस्तिहाला कहा जाएगा, यानी ये इस्तिहाला हो गया। क्यों? क्योंकि उसका असल रूप लकड़ी का था और इस लकड़ी ने अपना रूप बदल कर राख का रूप ले लिया है, यानी उसके असल में, उसके मूल में परिवर्तन हो गया है। अब चूंकि मूल में परिवर्तन हो गया है अर्थात उसका असल बदल गया है और ये परिवर्तन इस्तिहाला है, और वो खाक या वो राख जो उस नजिस लकड़ी से, वो अपवित्र लकड़ी से हमको प्राप्त हो रही है, वो पवित्र होगी। यहाँ पर एक बात कोट करने लायक है और ध्यान देने लायक है, वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है हम लकड़ी या नजिस लकड़ी को जलाते हैं और नजिस लकड़ी जलने के बाद कोयला बन जाती है, पहले लकड़ी थी अब कोयला बन गई, क्या ये कोयला भी पवित्र होगा? तो हमारे फुकहा ये कहते हैं नहीं, ये कोयला जो है वो पवित्र नहीं होगा, ये कोयला इस्तिहाला नहीं हुआ है। हाँ, अगर यही अपवित्र लकड़ी जलते जलते राख की सूरत में बन जाए, राख की सूरत अख्तियार कर ले, तो ये इस्तिहाला होगा और ये उसके पवित्र होने का कारण बनेगा। इसी प्रकार वो ईंधन जैसे पेट्रोल, मिट्टी का तेल या चर्बी या इस प्रकार की और जो चीज़ें होती हैं जिनको हम जलाते हैं, अगर ईंधन जलकर धुएं में बदल जाए, अगर ईंधन, नजिस ईंधन जलकर धुएं में बदल जाए, तो ये इस्तिहाला होगा और वो धुआं जो होगा वो पवित्र कहलाएगा। और इसी प्रकार शराब, जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं कि शराब के बारे में इस्लाम ने बहुत इसकी निंदा की और लोगों को इससे दूर रहने के लिए कहा है, जिसके बारे में अगर जानना है तो इसके अपने विषय में देखना होगा। बहरहाल, शराब अगर बदल कर सिरका बन जाए, जैसे कि हम जानते हैं कि अंगूर से शराब बनाई जाती है या किसी और चीज़ से अगर शराब बनाएंगी, अगर ये शराब अपना मूल रूप परिवर्तन करके सिरके में बदल जाती है, तो ये सिरका जो कि उस शराब से बना था और शराब नजिस थी, लेकिन ये सिरका पवित्र होगा। क्यों? क्योंकि इसने अपना मूल रूप बदल दिया है और इससे इस्तिहाला हो गया है। लेकिन यहीं पर ध्यान देने वाली बात है जो हम पहले भी कहते आ रहे हैं अभी इस बहस में अपनी शुरू से, वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको अपनी प्रथम दृष्टि में यह लगता है कोई चीज़ इस्तिहाला हो गई है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस्तिहाला नहीं होती हैं और हमको जो लगता है शायद पवित्र हो गई, वो पवित्र नहीं होती हैं। अगर कोई नजिस चीज़ अपना मूल रूप ना बदले तो वो पवित्र नहीं होती है। कुछ उदाहरण देख लीजिए ताकि ये बात स्पष्ट हो जाए। जैसे अगर किसी के पास, किसी व्यक्ति के पास नजिस गेहूं हो, अगर उस नजिस गेहूं को पीस कर आटा बना दिया जाए और उस आटे से रोटी बनाई जाए, तो वो आटा या वो रोटी जो उस नजिस गेहूं से बनाई गई है वो पवित्र नहीं होगी, बल्कि इसमें इस्तिहाला नहीं होगा, बल्कि वो अपवित्र ही रहेगी। और इसी प्रकार अगर नजिस अंगूर से सिरका बनाया जाए, अगर नजिस अंगूर से सिरका बनाया जा रहा है, तो वो भी पवित्र नहीं होगा, बल्कि अपवित्र ही रहेगा। जैसे अगर किसी चीज़ के बारे में हमको पता है कि ये नजिस चीज़ नजिस हो गई थी, अगर वो अब हमको शंका हो रही है, हमने जैसे शंकाओं के बारे में बताया है पहले भी, इस बात के बारे में हमने बातचीत की है। शंका में ध्यान रखने वाली चीज़ है कि हम पहले क्या चीज़ थी, जो चीज़ पहले होगी वही शंका के बाद मानी जाएगी। अगर किसी चीज़ के बारे में हमको पता था नजिस है, अब हमको शंका हो रही है कि ये इस चीज़ में इस्तेहाला हुआ है या नहीं हुआ है, तो हमारे फुकहा ये कहते हैं कि इस चीज़ को इस्तेहाले के माध्यम से पवित्र नहीं माना जाएगा, बल्कि वो नजिस ही रहेगी। इस्तेहाले के भाग को हम यहीं पर समाप्त कर देंगे। लेकिन मुताहरात के संबंध में कुछ और चीज़ें हैं जिनको हमने जैसा कि वादा किया था स्पष्ट रूप से विस्तृत रूप से आपके सामने बयान करेंगे, लेकिन अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।